मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
ओम शांति। कहते पहले बनियों की दुकानों पर ना बड़े बड़े बोरों में सामान होता था, आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर सोफिस्टिकेटेड पैकेट्स बने होते हैं। तो एक बहुत बड़ा मिश्री का बोरा और एक सेंधा नमक जो होता है ना, नमक के डले उसका बोरा। अब चींटियों के लिए तो वो पहाड़ होता है, यानी एक चींटी रहती थी नमक के बोरे में, नमक के पहाड़ पर, और एक रहती थी मिश्री के पहाड़ पर। दोनों फ्रेंड्स थी। नमक वाली ने कभी मिश्री नहीं टेस्ट की थी, वो सोचने लगी आज मैं मिश्री वाली के घर जाके आती हूँ। और वो ढूंढते ढूंढते दुकान के दूसरे कोने में मिश्री के पहाड़ पर चली गई, और उसने वहां जाके अपने फ्रेंड को देखा कि वो अच्छी मोटी ताजी हो गई है। वो कहती तुम क्या खाती हो? कहती मैं मिश्री खाती हूँ। मिश्री क्या होती है? कहती अभी दिखाती हूँ तुम्हें। वो गई मिश्री तोड़कर लाई, उसमें से निकाली और उसको अच्छे से पीसा और बढ़िया इलायची फ्लेवर डाल के पेश किया अपनी नमक वाली फ्रेंड को। तो उसने थोड़ा सा खा के कहती वैसा ही है जैसा हमारा नमक होता है, कोई खास ठीक टेस्ट नहीं है इसका। वो तो ये कैसे हो सकता है? फिर वो गई, फिर मिश्री को पानी में घोला, उसका सिरप बनाया, फिर उसमें बढ़िया सा फ्लेवर डाल के अपनी फ्रेंड को पेश किया। उसने एक सिप लिया और कहती हाँ वैसा ही है जैसा नमक का पानी होता है, कोई खास बात नहीं है, कुछ अजीब सा ही टेस्ट है। तो उसने सोचा अभी कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने भी सुना है नमक तो कड़वा नमकीन होता है, तो ऐसा कैसे बोल सकती है, मिश्री तो बहुत मीठी होती है। तो मिश्री वाली ने कहा कि तू अपना मुंह खोल के दिखा। जब उसने मुंह खोला तो देखा मुंह में नमक की डली रख के लाई थी घर से ही। अब मुंह में नमक की डली थी तो वो जो भी बाहर से टेस्ट लेती थी वो नमक के साथ मिक्स होके जाता था। तो प्रॉब्लम मिश्री में थी कि यहां थी? इसीलिए विघ्न कहीं बाहर से नहीं आते हैं, अंदर ही पैदा हो जाते हैं सिर्फ कमजोर स्थिति के कारण। तो जब किसी से मिलना हो और पहले से मन में नमक की डली रख के जाओ कि ये ऐसा ही होगा, रखते हैं ना पूरी पूरी, ये बंगाली ऐसे होते हैं, गुजराती ऐसे होते हैं, बनिए ऐसे होते हैं, जाट ऐसे होते हैं, पूरी कम्युनिटी के लिए भी मन में नमक की डली रख लेते हैं। तो फिर जो बिहेव करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, फिर टेस्ट भी वैसा ही आएगा। तो इसीलिए कैसे विघ्न अपने अंदर पैदा हो जाते हैं, क्या छोटी छोटी बातें विघ्नों के रूप में डराने लग जाती है, निर्विघ्न स्थिति कैसे बनाए। और ब्राह्मणों के लिए तो आज की मुरली इतनी बढ़िया थी कि ब्राह्मणों के लिए निर्विघ्न रहने का और शक्तिशाली रहने का बहुत अच्छा तरीका। और बताएंगे हमारे बहुत शक्तिशाली बहुत बहुत अच्छे दीदी, जिनके पास अपनी मंथन की शक्ति भी बहुत है, प्रैक्टिकल धारणा की शक्ति भी बहुत है। सभी जानते हैं उषा दीदी को, बस और क्या चाहिए फिर। तो उषा दीदी निर्विघ्न स्थिति के और अच्छे अच्छे टिप्स देंगे, ताकि जब आप यहाँ से जाएं तो बहुत पावरफुल बनकर जाएं, निर्विघ्न और खुश बनकर जाएं। क्योंकि जो निर्विघ्न होगा वो सुलझा हुआ होगा, और सुलझे हुए का चेहरा सुखदायी होगा, खुशनुमा होगा। उलझे हुए का चेहरा 12 बजे होंगे, है ना? तो इसीलिए सुखदायी बनकर जाना है। तो आदरणीय उषा दीदी आप यज्ञ की शान हैं, हर जगह जहाँ बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम, बहुत से बहुत लोगों को, आत्माओं को प्रभावित करना है, वहाँ टीवी के नीचे, पीस ऑफ माइंड के नीचे स्क्रॉल कर रहा है, उषा दीदी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इसीलिए ऐसे आदरणीय उषा दीदी से हम सुनेंगे पावरफुल स्थिति, निर्विघ्न स्थिति कैसे बनाए। ओम शांति। आपको सबको पता है जैसे वेद व्यास जी ने गीता रची थी, वैसे आदरणीय उषा दीदी जी ने उस उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी सारी गीता को सीधा किया, पढ़ पढ़ के, टाइम निकाल निकाल के, स्पेशल दोपहर जाग जाग के बैठकर बहुत स्टडी की, और आपने बहुत अच्छा मंथन सबको सुनाया है, वो भी बहुत कीमती चीज है हमारे पास। तो इसीलिए आप उस तरह की सच्ची गीता की व्याख्याता हैं।
ओम शांति। बाबा ने प्रतिदिन मुरली के अंदर इतनी सुंदर सुंदर बातों से हम सभी को सजाते हुए सशक्त कर दिया है, और इसीलिए हम सभी अनुभवी है विघ्न क्या है और निर्विघ्न भी कैसे बनना है। हर एक अपने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से समय प्रति समय जो भी बातें आती है उसको क्रॉस करते ही जाते हैं, चाहे नेचुरल रूप से टिप्स अपना लेते हैं, चाहे बाबा की मुरली से हम टिप्स ले लेते हैं, और इसी तरह पुरुषार्थ करते हुए निर्विघ्न बन जाते हैं। लेकिन ये विघ्न की उपज कहां से होती है, कैसे होती है और क्यों हमारे सामने आते हैं? बाबा ने मुरली में हम बच्चों को सुनाया है कि जिस माया के ग्राहक हम 2500 साल से रहे हैं, और अब जब बाबा आए तो एकदम माया का हाथ छोड़ करके बाबा के बच्चे बन गए, तो बाबा ने कहा माया इतनी सहज थोड़ी अपने ग्राहक को छोड़ देंगी। दुनिया में भी कोई ग्राहक एक दुकान से अगर दूसरी दुकान में भी चला जाता है तो वो पहले वाला क्या करता है, अरे भाई अपना ग्राहक उधर कैसे चला गया, उसको कोई ना कोई प्रलोभन देता है, लालच देता है, अरे तू वहां कहां जा रहा है, तू तो यहां का है। तो इसी तरह माया भी क्या करती है, विभिन्न स्वरूप लेकर के हमारे सामने हमें आकर्षित करने का, हमें खींचने का, ट्रैप करने का, प्रलोभन भी देती है, लालच भी देती है, अपना बनाने का प्रयत्न करती है, और नहीं बने तो फिर विघ्न रूप भी खड़े करती है, कई विघ्न खड़े कर देती है हमारे रास्ते में कि अब देखते हैं तुम कैसे ईश्वर का बन करके चलता है। दूसरी बात कि कलयुग में अगर विघ्न न आए तो सतयुग में थोड़ी आने वाले हैं। ये युग ही ऐसा है जहां विघ्न आएंगे ही आएंगे, है ना? तो इसीलिए बाबा का बच्चा बनना माना माया को चैलेंज करना। अब चैलेंज कर देते हैं तो फिर चैलेंज को स्वीकार भी करने के लिए हमें तैयारी अपनी रखनी होगी, क्योंकि इतनी सहजता से माया हमें कोई छोड़ने वाली नहीं है। तो इसीलिए माया तो आएगी ही और अंत तक आना ही है। बाबा हमेशा कहते हैं अभी तो कुछ नहीं है, अंतिम समय तो पहाड़ गिरने वाले हैं, उसकी भी तैयारी रखनी है। माना अभी तक तो पहाड़ आए ही नहीं है, अभी तो बड़े बड़े विघ्नों के पहाड़ गिरने वाले हैं, पहाड़ आएंगे हमारे सामने, लेकिन उसके पहले ये जो हमें टाइम मिला है अपने आप को क्या तैयार करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, तो शक्तिशाली बन जाना चाहिए। जैसे बहन जी ने बहुत सुंदर बात कही कि विघ्न कहां से आते हैं, हमारी ही कमजोर स्थिति। और कमजोर स्थिति क्यों बनी, क्योंकि विचारों में कमजोरी है, कहीं न कहीं संस्कारों में कमजोरी है। और इसीलिए जब कोई न कोई धारणा की कमी हो जाती है, वहां से कमजोरी की उत्पत्ति होती है। कौन सी धारणा की कमी होती है जो कमजोरी बन जाती है, और वो कमजोरी ही विघ्न को खड़ा करती है? कौन सी धारणा की कमी? मुख्य रूप की धारणा की कमी है पवित्रता की। कोई ना कोई इम्प्योरिटी मन के अंदर वो विघ्न को खड़ा करने के लिए निमित्त बनती है। दूसरी कौन सी धारणा की कमी? सहन शक्ति की कमी, या सहनशीलता के गुण की धारणा की कमी है। बार बार अगर सहन नहीं होता है, गुस्से में आ जाते हैं, तो वो कमजोरी आगे चल करके कहीं न कहीं विघ्न को खड़ा करने के लिए निमित्त बनती है, विघ्न को क्रिएट करती है। और कौन सी धारणा की कमी? धैर्यता की कमी, पेशेंस नहीं है। इम्पेशेंट बहुत है, और इसीलिए जहां हमारी धैर्यता की कमी हो जाती है, धीर्य हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, समय से पहले फल की प्राप्ति चाह लेते हैं और उसमें विघ्न खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं धैर्यता, सहनशीलता, गंभीरता, ये गुणों की धारणा की कमी, ये कमजोरी हमारे संस्कारों के अंदर जब आ जाती है, तो वही विघ्न को खड़ा करने के निमित्त बन जाते हैं। कहीं अधीर्य हो गए, कहां गंभीरता की कमी, विवेक शक्ति को यूज नहीं करते हैं। बाबा ने इतना सुंदर विवेक हमें, आध्यात्मिकता वाला विवेक दिया, लेकिन वो विवेक को यूज न करके, गंभीरता को यूज न करते हुए, अधीर्य हो करके, समय से पहले, जैसे मैं बहुत कुछ जानती हूं और बोल देते हैं तो क्या हो जाता है, वहां से विघ्न खड़ा हो जाता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे युक्ति युक्त होकर के चलो, पहले ये गुणों की धारणा करो, युक्ति युक्त माना ना? युक्ति युक्त माना कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि भाई झूठ बोल दो, युक्ति युक्त है, उसको थोड़ा कोई नुकसान हुआ है। अगर मैंने झूठ बोला तो उसका थोड़ी कोई नुकसान हुआ, उसका थोड़ी मैंने कुछ बिगाड़ा, ये युक्ति युक्त नहीं। युक्ति युक्त का मतलब है समय पर इन गुणों की धारणा को अपनी चेक करो और उसका प्रयोग करो, गंभीरता से चलो, धैर्यता को अपने अंदर धारण करते हुए चलो, ये है युक्ति युक्त होकर के चलना। ये गुणों की युक्ति को यूज करना है, अवगुणों की युक्ति को यूज नहीं करना है। गुणों की युक्ति को यूज करते हुए, उसको अप्लाई करते हुए जब चलते हैं, तो हम कई विघ्नों से सेफ हो जाते हैं। क्योंकि संगम युग में बहुत सुंदर बात बाबा ने कह दिया है पहले ही, कि अंतिम समय पेपर कहां से आने हैं हमें मालूम है। कहां से आएंगे? अपनी ही कमजोरी हमारा पेपर लेने के लिए निमित्त बने। तो पेपर आउट हो गया है, पेपर लेने वाले हम खुद, पेपर सेटिंग करने वाले खुद, इजी सेट करना है, डिफिकल्ट सेट करना है, ये भी हमारे हाथ में है। तो पेपर सेट करने वाले खुद हम, एग्जामिनर हम खुद, एग्जाम देने वाले हम खुद, और पास और फेल करने वाले भी हम खुद। बाबा पास फेल नहीं करेगा। बाबा ने हमें बता दिया कि अंतिम पेपर कहां से आएगा, तो पेपर आउट हो गया। कि हमारी अपनी कमजोरी हमारे लिए पेपर का रूप होकर के आएगी, विघ्न रूप बन करके आएगी। तो एग्जाम लेने वाले हम खुद, खुद का, खुद ही खुद का एग्जाम लेने वाले। या तो हम उस कमी कमजोरी को भर दे, लेकिन वो कमी कमजोरी अभी तक क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं अलबेलापन है। ठीक हो जाएगा ना, अभी तो समय पड़ा है ना, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, हो जाएगा, ठीक कर देंगे ना इसको। ऐसे करके ये अलबेलेपन के दनलब के तकिए लगा करके अभी तक उस कमी कमजोरी को हम पाल रहे हैं। और जो पाल रहे हैं, आज वो भले छोटी कमजोरी होगी, लेकिन समय आने पर क्या हो जाएगा, वही कमजोरी बहुत बड़ा रूप ले लेंगे। तो पेपर डिफिकल्ट करना भी हमारे हाथ में, इजी करना भी हमारे हाथ में है। तो एग्जामिनेशन लेने वाले भी हम खुद, एग्जामिनेशन देने वाले भी हम खुद। उसके बाद भी अगर हम फेल हुए तो क्या कहेंगे? क्योंकि बाबा फेल और पास का सर्टिफिकेट नहीं देगा, फेल और पास का सर्टिफिकेट भी हम खुद देने वाले हैं। कि जैसे ही हम फेल हुए या पास हुए, पास हुए तो खुशी भी होंगी, वह पास हो गए हम तो खुद ही दे दिया ना पास का सर्टिफिकेट, और फेल हो गए तो भी अफसोस होगा, अरे तेरी कहीं फेल हो गए। तो फेल का सर्टिफिकेट खुद दिया, तो पास का सर्टिफिकेट भी खुद दिया, फेल का सर्टिफिकेट भी खुद देते हैं। इसीलिए किसी पर दोष डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर भगवान हमें पास या फेल करे तो भी शायद हम कहे, मनुष्य है ना, कहे भगवान ने पार्शियलिटी कर दिया। इसीलिए बाबा ने पहले से पेपर आउट कर दिया, अब आप पुरुषार्थ करो कि कितना आपको डिफिकल्ट एग्जाम अपने लिए सेट करनी है या इजी एग्जाम सेट करनी है, और खुद ही एग्जामिनर बन करके चेक करना है कि पास हुए या फेल हुए, ताकि आप किसी के ऊपर दोष न डाल सको कि इसने पार्शियलिटी की, उसने नहीं की, ये नहीं किया। खुद ही खुद का रिजल्ट आउट कर रहे हैं, और खुद ही खुद का रिजल्ट आउट करके बाबा के सामने जाएंगे, बाबा मैं फेल हो गया। जैसे कल भी बाबा ने कहा, कई बच्चे लिखते बाबा हम फेल हो गए, है ना, ये माया के प्रभाव में आ गए और इसीलिए हम फेल हो गए। तो खुद ही खुद को एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, तो किस पर दोष डालेंगे? हाँ, किस पर दोष डाल सकेंगे? किसी पर नहीं। तभी बाबा ने कहा, फिर अंतिम समय कहीं पश्चाताप के आंसू हमारे ना आ जाए, इसके लिए अभी से ये पुरुषार्थ करो कि वो कमी को भर दे, क्योंकि ये कमी ही सहनशीलता की कमी है, धैर्यता की कमी है, ये कमी ही हमें कमजोर करती है। और जहां कमजोर हुए वहां विघ्न खड़ा हुआ, वहां विघ्न खड़ा हुआ, इसीलिए उसको क्रॉस करना मुश्किल होता है। दूसरी बात, जैसे बाबा कहते हैं, व्यर्थ, जितना व्यर्थ संगति व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ में टाइम पास करना, ये व्यर्थ ही हमारे लिए बहुत बड़ा विघ्न, क्योंकि समय पर जो कार्य नहीं किया और व्यर्थ में वो टाइम चला गया तो उसमें क्या होगा, निर्विघ्न कैसे बन सकेंगे? तो समय पर निर्विघ्न नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो विघ्न तो खड़ा हो जाता है। मुझे याद आता है कि हम पिछले साल लखनऊ गए थे, आप लोगों में से भी कई लोग गए होंगे, भूलभुलैया का खेल देखा है लखनऊ का, है ना? नहीं देखा है? तो भूलभुलैया का जो खेल है उसके पहले आगे महल है, वो नवाब का पूरा महल है, और वो महल में जो है नवाब जब बैठा था, नवाबी थी उसकी, ये प्रैक्टिकल सत्य घटना वहां सुनाई हमको, तो कहा कि वो चेस खेल रहा था। तो जब चेस खेल रहा था तो उसके सैनिकों ने सूचना दी कि अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हमला बोलने के लिए वो आ रहे हैं, उनका शुरू हो गया है, वहां से निकल गए हैं वो और हमारे तरफ इनकी सेना आगे बढ़ रही है। तो नवाब ने कहा अभी तो निकले हैं ना, कोई बात नहीं, ये लास्ट गेम तो खेल ले वे, है ना? तो चेस खेलता रहा उसके साथ में जो था, उसके साथ खेलता रहा। उसके बाद उसको कहा भाई लखनऊ की बॉर्डर पर आ गए, ये बॉर्डर पर आए ना, अभी तो एक गेम और हो जाएगी, इतना उसको चस्का था उसका गेम खेलने का। तो चस्का होने कारण कहा लखनऊ की बॉर्डर पर आए है ना, कोई बात नहीं, एक गेम और हो जाए। उसके बाद कहा महल के सामने आ गए, तो महल के सामने आ गए तो सारे नौकर जो है वो भाग गए महल से, भाई अभी तो या तो मरो, क्योंकि इसने तो कोई तैयारी सैनिकों को ऑर्डर दिया नहीं, कोई सैनिक तैयार नहीं किए, खड़ा नहीं किया, अभी आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं, है ना, करते हुए तो सारे नौकर भाग गए। जब वो साथ में खेलने वाला भी भाग गया तब वो नवाब कहे अच्छा आ गया क्या, अब मेरी जूती कौन पहनाए? अब जूती पहनाने वाला वो तो भाग गया, अब जूती कौन पहनाए? खुद पहनने की आदत नहीं, उस जूती के कारण वो पकड़ा गया, जूती कौन पहनाए, भागा नहीं, मेरे को जूती कौन पहनाए, और इसीलिए वो पकड़ा गया। और जब उस लखनऊ के नवाब को लेके गए वहां अंडमान निकोबार में लेके गए और उसकी अंतिम इच्छा पूछी, तो कहा कि भाई मुझे तीन पैर पृथ्वी, मुझे अपने लखनऊ में ही दफनाइए मेरे शरीर को, तो तीन पैर पृथ्वी भी नहीं मिली उसको, मना कर दिया अंग्रेजों ने कि वहां नहीं दफनाएंगे। कहने का भावार्थ कि कई बार हम भी जो टाइम वेस्ट करते हैं खेलने में, खेलने में किसमें खेल रहे हैं, किसमें खेल रहे हैं, किसमें खेल रहे हैं, तो क्या होगा? ठीक है माया आएगी तब ना, अभी विनाश थोड़ी होने हुआ है, जब होगा तब ठीक हो जाए, लेकिन ये जो एक आदत है कि एक गेम और खेल ले वे, या एक व्हाट्सएप और देख ले वे, या एक फेसबुक का और देख ले वे, ये जो हमें भी एक मॉडर्न खिलौने मिले हैं, कहीं ना कहीं ये इतने टाइम वेस्ट हमारे कर रहे हैं, और ये टाइम वेस्ट जो हमारा जा रहा है वही आगे चल करके हमारे सामने क्या करेगा, बहुत बड़ा विघ्न खड़ा करेगा, कि जिस कारण से फिर अंत में हम कहां पहुंचेंगे। इसलिए कहा कि ये जो कमी है, ये हमारे अंदर कमजोरी हमें अंदर से कमजोर कर रही है, हमारे पुरुषार्थ को, हमारे पुरुषार्थ को गति नहीं दे सकती है। मैंने इस चीज का अनुभव करने के लिए मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी एक गेम खेल करके देखती हूं। देखा मैंने भी डाला, लेकिन मैंने देखा कि जब योग में बैठे ना तभी भी वही दिखाई देता था, मैंने कहा ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसी बात कि जो योग में भी वही दिखाई देवे, वो चीज नहीं चाहिए हमें। योग में बाबा दिखाई देना चाहिए, योग में वही गेम दिखाई देवे, तो ये तो हमारी मानसिकता को कितना कमजोर कर रहा है। जैसे ही उस चीज का अनुभव हुआ तो उसके बाद जो है कि नहीं, ये चीज सचमुच किस तरह से व्यक्ति को कमजोर करती है, ये मैंने खुद अनुभव किया, खुद अनुभव किया इस चीज का। और उस दिन के बाद दोबारा उस चीज को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड भी नहीं किया कि नहीं चाहिए हमको ये चीजें, कि जो हमें अंदर से कमजोर करे और ये हमारे पुरुषार्थ को ढीला करे, है ना, इसीलिए वो चीज हमें नहीं चाहिए। तो कहने का भावार्थ कि हाँ, जहाँ मुरली है, मुरली की या बाबा को योग लगाने के लिए गीत है, वो चीज है, बात अलग है, लेकिन उन चीजों में हम अपने समय को व्यर्थ न गवाएं, नहीं तो जैसे बाबा कहते, व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी ही है जो विघ्न को खड़ा करने का कारण बनती है। इसीलिए कहा जाता है विघ्न क्या है, इट्स अ क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। जब हमारा मन कमजोर हो जाता है, हमारी संकल्प शक्ति में पावर क्षीण हो जाती है, तब विघ्न हमारे अंदर से खड़े होते हैं, बाहर आते हैं, जो हमारे ही टेस्ट पेपर लेंगे। लेकिन निर्विघ्न बनने के लिए हजार भुजा वाला बाबा हमारे साथ है, है ना, हजार भुजा वाला बाबा हमारे साथ है। ये कॉन्शियसनेस में इतना इंस्टिल हो जाए, अंदर में समा जाए, और उसका विश्वास, निश्चय बुद्धि बनना के सचमुच हजार भुजा वाला बाबा मेरे साथ है और इसीलिए मैं अकेली नहीं हूं। तो अंदर से हिम्मत, तो हिम्मत की कमी ये कमजोर करेगी, लेकिन जब हजार भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, ये हिम्मत आ गई, तो फिर बड़े से बड़ी परिस्थिति को भी पार करने की शक्ति आ जाती है। दूसरी बात कि विघ्न अगर आता भी है, तो विघ्न हमें कुछ न कुछ अनुभवी बनाने के लिए आता है, कोई पाठ पढ़ाने के लिए आता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हर बात में संपूर्ण यहां ही बनना है। भविष्य में तो चले जाना है और वो प्रारब्ध में जाकर के हमारी सीट हमने फिक्स कर ली, जो यहाँ के पुरुषार्थ से वो वहां पर गए और उस सीट पर सेट होकर के हमने फिर अपने प्रारब्ध को भोगा, लेकिन वो सीट तो यहां से ही फाइनल करनी है। तो इसीलिए जो विघ्न आते हैं, मुझे अनुभवी बनाने आते हैं, संपूर्णता के एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। ये दृष्टिकोण बनाना, माना विघ्न को विघ्न रूप में न देखना, लेकिन ये विघ्न मुझे क्या पाठ पढ़ाने आए हैं, किस बात के लिए अनुभवी बनाने आए हैं, वो अनुभव शायद मेरे जीवन के अंदर कमी है जो संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने में वो एक आगे कदम बढ़ाना हुआ। क्योंकि कभी भी ब्राह्मणों से अगर पूछते हैं ना, हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना, यही लक्ष्य ना, कोई राम सीता बनना चाहता है, सोच लेना अच्छी तरह से, राम सीता बनना चाहता है, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं, सब अच्छा। अब लक्ष्मी नारायण की क्वालिफिकेशन क्या है, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये क्वालिफिकेशन है। अच्छा, सर्वगुण संपन्न, गुण कितने हैं, गुण कितने हैं, बाहर लगे हुए ना, वहां हिस्ट्री हॉल के बाहर कितने गुण हैं, 36 गुण हैं। अब 36 गुण में मेरे अंदर कितने गुण आए, लक्ष्मी नारायण बनना है तो सर्व गुण संपन्न, अब मेरे अंदर निर्माणता है या नहीं है, मेरे अंदर सहनशीलता है या नहीं है। तो हर गुण का एक पेपर तो आएगा या नहीं आएगा? आएगा तो 36 पेपर तो देना पड़ेगा, है ना? 36 पेपर तो ये देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो मुझे पता चले मेरे में ये गुण है या नहीं है। तो 36 गुण के 36 पेपर। भारत के अंदर सबसे डिफिकल्ट एग्जाम कौन सी होती है पता है? आईएएस की। बाबा कई बार कहते हैं आईएएस की एग्जाम सबसे डिफिकल्ट होती है, बहुत टफ होती है। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट कितना है, आईएएस का रिजल्ट कितना होता है, 2% या 3%, मैक्सिमम 3%, बाकी 2% रिजल्ट होता है। इतनी डिफिकल्ट, माना जितने लोग अपीयर किए 100 में से खाली 2 लोग पास होते हैं, बाकी 98% फेल होते हैं। इतनी टफ एग्जाम होती है। तो हम कौन बन रहे हैं? लक्ष्मी नारायण माना, हाँ, विश्व महाराजन। तो VMAS क्या बन रहा है? IAS नहीं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं, VMAS विश्व महाराजन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो उसका रिजल्ट कितना होगा? कितने अपीयर हो रहे हैं, कितने अपीयर हो रहे हैं इस एग्जाम के लिए? 33 करोड़ अपीयर हो रहे हैं। पास कितने हो रहे हैं? पास विथ ऑनर 8। तो रिजल्ट कितना परसेंटेज हुआ? 20 नाखून से भी ज्यादा का जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं जोर लगाना पड़ेगा? बनना है लक्ष्मी नारायण। नंबर कैसे बन जाते हैं? तो 36 पेपर तो ये देना पड़ेगा। अच्छा, जितनी बार फेल हुए तो रीअपियर, तो पेपर बढ़ गए ना। अच्छा, फिर 16 कला संपूर्ण, तो 16 कला, तो 36 प्लस 16 कितने हुए? 52। फिर उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम, तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक की मर्यादाएं क्या है संकल्प वाणी कर्म संबंध की, वो सारी मर्यादाओं का पेपर आएगा। डबल अहिंसक स्थूल में भी नहीं तो सूक्ष्म में भी नहीं। मनसा वाचा कर्म, मन से भी किसी को दुख नहीं देना है, डबल अहिंसक। अब आप सोचो, इतने पेपर तो देने पड़ेंगे ना। या तो लक्ष्य बदली कर दो, राम सीता का लक्ष्य फाइनल कर दो, है? तो थोड़े कम हो जाएंगे पेपर। हाँ वही ना, 2 कला का पेपर कम, मना थोड़ा मिल जाएगा रियायत, लेकिन कम से कम सत्युग जितना तो नहीं। तो इसीलिए कहा कि जब VMAS बन रहे हैं, विश्व महाराजन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए हमने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, और फिर हम कहे कि हमारे सामने पेपर ही ना आए, विघ्न ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने हमें कौन सा नजरिया दिया है विघ्नों के लिए, कि विघ्न पेपर टाइगर है, कुछ नहीं है, और मैं विजयी नहीं होंगी तो कौन होगा? हजार भुजा वाला बाबा मेरे साथ है तो फिर विजयी अगर हम नहीं हुए तो कौन हुए? कितने ऊंचे ऊंचे स्वमान बाबा ने दिए हैं हमें कि मैं विजयी आत्मा हूं। रोज अमृत वेले अपने आप को विजयी का तिलक लगा लो, विक्ट्री का तिलक लगा लो। तो इस तरह से अगर हम तैयार अपने आप को कर लेंगे कि मैं जो भी माया को पेपर लेने हैं वो पेपर टाइगर आ जाए मेरे सामने, हम उस पेपर टाइगर से डरने वाले नहीं है। तो दृष्टिकोण को परिवर्तन करना कि ये पेपर भी आए हैं मुझे कुछ सिखाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो जैसे हमारे अंदर हिम्मत आ जाएंगी, आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा, बाबा के साथ को हर पल अनुभव करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे कि बाबा मेरे साथ है। इसलिए बाबा कहते हैं जहां बात आ गई तो विघ्न खड़ा हो गया, जहां बाप आ गया तो समाप्त हो गया ना? तो इस तरह के जो बाबा ने हमें टिप्स दिए हुए हैं मुरली के अंदर, ये टिप्स को हमें यूज करना है तो विघ्न को समाप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, पेपर टाइगर है ना? तो सबसे पहली बात तो दृष्टिकोण परिवर्तन करना, मुझे क्या सीखना है और सीखते हुए अनुभवी बनना है, क्योंकि ये मेरे जीवन के लिए बहुत वैल्यूबल लेसन है। अगर ये लेसन मेरा नहीं हुआ तो मैं शायद इसी में कमजोर हो जाऊंगी। जैसे यूनिट टेस्ट जब लेते हैं ना, तो एक एक सब्जेक्ट की टेस्ट होती है, तो ये जो समय मिला है ये यूनिट टेस्ट का समय है, एक एक बात आती है, लेकिन फाइनल एग्जाम जब आएंगे तो बाबा कहते हैं सब तरफ से एक साथ में पेपर आएंगे, सर्व दिशाओं से पेपर एक साथ आएंगे। तो यूनिट टेस्ट में जब पास करने की हिम्मत आई तो क्या हो गया कि हमारे अंदर वो हिम्मत के अंतिम समय अगर सब तरफ से भी आए ना, तो हमें पता है उसको कैसे हैंडल करना है और अपने जीवन को किस तरह से युक्तियुक्त होकर के उन विघ्नों को क्रॉस करते हुए बाहर निकाल देना है। ये बाबा हमें सिखा रहा है, ये बाबा हमें सिखा रहा है। इसीलिए उसमें डरना नहीं, या ये नहीं सोचना कि नहीं विघ्न आना ही नहीं चाहिए, विघ्न तो आएंगे, अंत तक आने ही है, ये भगवान के महावाक्य है, अंत तक आने ही है, जब आने ही है तो हम तैयार है उसके लिए। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं, क्योंकि तभी तो ये विघ्न ही वास्तव में हमें प्रत्यक्ष करेगा, ये विघ्न ही वास्तव में अंतिम समय जब चारों ओर से विघ्न आएंगे और उसमें जब हम विजयी हुए तो विजयी रत्न के रूप में ये प्रत्यक्ष करेगा दुनिया के सामने, ये भगवान के बच्चे हैं। तो जय जयकार जो होगी, ये विघ्न ही हमें जय जयकार दिलाएगा, बिना विघ्न के जय जयकार नहीं होंगी। सहज है, विघ्न आए ही नहीं तो जय जयकार किस बात की? जय जयकार तो तभी होंगे ना जब बात आए और उसमें हम विजयी हुए, तो सारी दुनिया जय जयकार के नगाड़े बजाएंगी, प्रकृति भी हमारा स्वागत करेगी। तो ये विघ्न ही हमें अंत में जय जयकार के रूप में सारे दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करने का एक बहुत श्रेष्ठ माध्यम है। सोचो कितनी ऊंची बात है ये। और अगर अभी से हम डरते रहे तो क्या होगा, अंतिम समय क्या होगा? हमारा भय ही हमें फेल करने के निमित्त बनेगा। इसलिए बाबा कहे तुम निर्भय हो, निर्भय बन जाओ, क्योंकि ये कागज के शेर है कि कुछ नहीं है, है ना? इसीलिए हर सवाल के लिए जैसे हमारे पास पहले से ही तैयारी है। कई बार कई लोग नहीं कहते, बार बार मेरे सामने यही बात क्यों आती, बार बार मेरे सामने यही बात क्यों आती, बार बार क्यों आती है? कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात की चूक हो रही है जो विजयी बनने में हमें चूक रहे हैं। इसलिए बाबा जैसे कई बच्चा अगर मान लो मैथमेटिक्स में वीक हो और उसका फादर उसको देखता है वीक है, तो उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं कराएगा? कोई खेल में अगर कोई वीक है तो उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा कर क्या करते हैं, तैयार कर देते, स्ट्रांग कर देते हैं। ठीक इसी तरह माया के साथ की अगर हमारी बॉक्सिंग है, मल युद्ध है हमारा, तो बाबा भी हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अभी दे रहा है और ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे करके हमें क्या परफेक्ट बना रहा है, परफेक्ट बना रहा है उसके लिए, ताकि अंतिम समय अगर वो बात हमारे सामने आए तो हम क्या होते हैं, रेडी है, हमें पता है कैसे इसको हैंडल करना है। माना वो चीज हमें भयभीत नहीं करेगी, नहीं तो भयभीत कर देंगे, अरे ये तो मैंने पहले कभी किया ही नहीं, तो डर जाएंगे ना, और वो डर ही हमें फेल कर देगा। इसलिए बार बार जब कोई चीज की प्रैक्टिस हो जाती है, बार बार अगर हमने वो विघ्नों को क्रॉस करने का अलग अलग ढंग से क्रॉस किया है, तो हम अनुभवी बन गए, तो अंतिम समय चारों ओर से अगर पेपर एक साथ में भी आए तो भी हम डरने वाले नहीं है, निडर है, क्योंकि हमें पता है इसकी विजयी हमें प्रत्यक्ष करेगा, दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करेगा, और दुनिया तभी तो कहेगी वाह प्रभु तेरी लीला परंपार है। ऐसी आत्मा को भी तुमने एक बना दिया, शेर बना दिया, हमें तो पता ही नहीं, हम तो सोचते थे ये कमजोर है, लेकिन ये तो शेर है कि एक साथ में 10 विघ्न उसके सामने, उसको भी सहजता से क्रॉस कर दिया, है ना, जरा भी हिला नहीं, मन से भी हिला नहीं, क्यों क्या का क्वेश्चन मार्क नहीं आया, तो क्यों क्या का क्वेश्चन मार्क भी जहां खड़ा नहीं हुआ, उसके लिए बाबा कहते कोई भी विघ्न आता फुल स्टॉप लगाना सीखो, सहज से सहज तरीका है इसको पार करने का, फुल स्टॉप, व्यर्थ में नहीं जाओ, क्योंकि ये व्यर्थ चिंतन हमें अंदर से भयभीत करेगा, ये भय को बढ़ाएगा, क्या करे क्या करे कैसे करे, ये हमें और हमें अंदर से कमजोर करता है, क्वेश्चन मार्क, इसीलिए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, वाहरे बाबा वाहरे मैं वाहरे मेरा पार्ट, है ना, क्या सुंदर पार्ट मेरा है, तो इसीलिए फुल स्टॉप लगाते हुए आगे बढ़ो सेकंड में, क्योंकि सेकंड का ही समय मिलेगा उस पेपर को पास करने का, इतनी मेंटली तैयारी हमारी होनी चाहिए कि एक सेकंड में भी क्वेश्चन उत्पन्न न हो, इतनी सेकंड तक की हमारी तैयारी हो जाए विघ्नों को क्रॉस करने के लिए, उसको कहते हैं निर्विघ्न स्थिति। निर्विघ्न का मतलब ये नहीं विघ्न आएंगे नहीं, निर्विघ्न स्थिति का मतलब है सेकंड में हमने उस विघ्न को पार किया, या कितना समय लगाया, एक घंटा लगाया, एक दिन लगाया, एक हफ्ता लगाया, कितना समय लगा, तो सेकंड तक की स्थिति जब हम पहुंच जाते ये है निर्विघ्न स्थिति। निर्विघ्न का मतलब ये नहीं विघ्न आएंगे ही नहीं, लेकिन हाँ स्वमान हमें ये लेना है मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, इतना सेकंड तक की पहुंचने की मेरी स्टेज हो जाए, ये स्वमान नहीं लेना है मैं विघ्न विनाशक हूं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है कुछ बातें समझता नहीं है, हमारा ब्रेन कुछ बातें समझता नहीं है, और इसीलिए जब हम ये स्वमान लेते हैं मैं विघ्न विनाशक हूं, तो विघ्न को विनाश करने वाली, तो विनाश कब करेंगे, विघ्न आएंगे तभी तो विनाश करेंगे, तो हम विघ्न को आवाहन कर रहे हैं, फिर हम विनाश करेंगे, और विनाश करके मैं विजयी हो सकती हूं, क्योंकि विजयी आत्मा का अगर मैंने स्वमान नहीं लिया साथ में, तो विघ्न विनाशक में कभी कभी उस विघ्न को विनाश करने में ज्यादा समय भी लग गया और हम फेल भी हो गए, या हमारी हिम्मत टूटने की टूटने का आधार भी बन सकती है, हमारी सहनशीलता खत्म होने का आधार भी बन सकता है, जैसे कई बार कई लोग नहीं कहते भाई 10 बार तो मैंने सहन किया, फिर भी अगर वही की वही गलती करेंगे तो कितनी बार सहन करेंगे, तो माना मेरी लिमिट खाली 10 बार सहन करने की थी ना, अगर 11वीं बार आया तो फिर तो मेरा रिएक्शन जरूर होगा, तो विघ्न विनाशक माना मैं विघ्नों का आवाहन कर रही हूं, फिर उसमें विनाश करने के लिए मैं अपनी एनर्जी लगाऊं, और एनर्जी लगाते लगाते क्या होगा, कभी कभी मेरी हिम्मत टूट भी सकती है, मेरी सहन शक्ति टूट भी सकती है, इसीलिए ये स्वमान न ले, लेकिन ये स्वमान ले मैं निर्विघ्न हूं, माना अगर विघ्न आया भी तो जैसे पानी पर लकीर, नहीं आएगा ऐसा नहीं, आएगा तो जरूर, आएगा जरूर। और इसीलिए हमारी तैयारी एक सेकंड तक की होनी चाहिए कि आया और पानी पर लकीर की तरह चला गया, वो विघ्न मेरी अवस्था को हिलाने के निमित्त नहीं बना। इसको कहते हैं निर्विघ्न स्थिति, निर्विघ्न स्थिति। विघ्न आए ही नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो पहाड़ गिरने वाले हैं, अभी तो पहाड़ गिरने वाले हैं। एक बात सिर्फ कि विघ्न के साथ में जब हमारी विघ्न आते हैं तो नेचुरल है कि अभी तो हमारी युद्ध चलेगी थोड़ा समय, जब तक हम सेकंड की स्थिति तक पहुंचे तब तक कुछ समय चलती है, लेकिन उसमें जो है व्यर्थ चिंतन नहीं चलना चाहिए। जैसे कहा ना क्वेश्चन मार्क चला तो क्वेश्चन मार्क टेढ़ा रास्ता अपनाया, माना व्यर्थ चिंतन चालू हुआ, और व्यर्थ चिंतन जितना हमारा चला उतना वो विघ्न का समय बढ़ गया, वो विघ्न व्यर्थ चिंतन करते करते हम उस समय को एक्सपैंड कर रहे हैं, इलास्टिक की तरह उसको खींच रहे हैं। तो जो एक सेकंड का होना चाहिए उसको हमने एक घंटे तक खींच लिया, एक दिन तक खींच लिया, और एक दिन तक जितना व्यर्थ अंदर चलाया वो व्यर्थ का हिसाब तो हमें देना पड़ेगा। ये अंतिम समय है, सारी आत्माओं से जिन जिन से भी अभी तक हमारा कर्जा बाकी है इस जन्म का भी, वो कर्जा चुकाने तो आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, तो इसीलिए वो आत्माएं आएंगी हमारे साथ हिसाब चुकाने के लिए, और यही समय है, इसके बाद समय नहीं है, क्योंकि सतयुग में तो हिसाब है ही नहीं ना। इसीलिए जो अंतिम समय तक के कर्जे हैं वो यही चुकाने हैं, और जब चुकाने हैं तो इसीलिए हमारी हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हमारी हिम्मत टूट गई तो उसके बाद कभी खड़ा हो जाना वापस उसमें बहुत समय लगेगा। इसीलिए ये व्यर्थ का चिंतन ये हमारी हिम्मत को तोड़ता है, जो हमने इकट्ठी की स्वमान के माध्यम से, अपने आप को अमृत वेले बाबा से सकाश दे करके हमने हिम्मत इकट्ठी की, रोज विजय का तिलक दिया, लेकिन जब ये विघ्न आते हैं और उसमें व्यर्थ संकल्प चलता है व्यक्ति, तो कभी कभी व्यक्ति मना नर्वस हो जाता है। नर्वसनेस में क्या होता है? डिप्रेशन जैसी, अकेला रहना चाहता है कि मैं किसी के साथ अपनी बातों को शेयर करना नहीं चाहता, अकेला रहना चाहता, और अकेलेपन में जब वो अंदर में व्यर्थ चिंतन घर करने लगता है तो सबसे पहली चीज क्या होती है? वो हमारा कनेक्शन मुरली से तोड़ता है। मुरली उस समय अच्छी नहीं लगती है, मुरली में अगर गए भी तो भी एक भी शब्द अंदर जाता नहीं है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं जब विघ्न आता है तो सबसे पहले वो बाबा का साथ छुड़ाने का प्रयत्न करता है, और बाबा का साथ क्या है? मुरली। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। तो मुरलीधर से अगर हमारा साथ छुड़ाने के लिए मुरली हमें अच्छी नहीं लगती है उस वक्त, अगर मुरली में जाकर बैठे भी तो भी एक भी शब्द याद नहीं रहेगा, मुरली अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि वो व्यर्थ का कवच जो है वो मुरली को अंदर जान। और जैसे ही ये बाबा का साथ टूटा कि फिर उसके बाद उसका आक्रमण शुरू होता है। इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मुरली हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसे समय पर निर्विघ्न बनने के लिए मुरली सबसे बड़ा साधन है। बार बार मुरली को हाथ में रखो मुरली को रिवाइज करो, मुरली को पढ़ते जाओ, बाबा का हाथ छूटना नहीं चाहिए। बाबा का हाथ है, बाबा का हाथ है श्रीमत, ये हाथ हमारा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हाथ जब तक पकड़ा हुआ है माया चक्कर लगाती रहेगी, फेरी पहनती रहेगी, लेकिन वो अटैक नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही हाथ छूटा तो फिर अटैक पूरा होगा। इसीलिए अंतिम समय भी चारों ओर से अगर पेपर आए तो भी उस वक्त भी हमें मुरली को छोड़ना नहीं है। परिस्थितियां ऐसी आएगी कि आपको सेंटर तक पहुंचने नहीं देंगी, लेकिन फिर भी अपने पास, इसलिए बाबा कहते पुरानी मुरलियां अपने पास रखो। मुरलियां क्या होगी, मुरली हमारे हाथ में होंगी तो माया फेरी पहन करके आकर चली जाएंगी, वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगे। ये बाबा का हाथ पकड़ के रखो, वो कैसे भी करके हमें बाबा का हाथ छुड़ा नहीं सकती है। इसीलिए मुरली बार बार अपने पास ही रखो, अपनी जेब में रखो, अपने पर्स में रखो, अपने पास रखो। जब टाइम मिला मुरली के महावाक्य चिंतन करो, उसको देखो, तो क्या होगा, व्यर्थ चिंतन चलने का मार्जिन नहीं, क्योंकि व्यर्थ ये विघ्न को क्या करता है, पानी, वो आग देता है, जैसे पेट्रोल देता है, ये व्यर्थ पेट्रोल देता है जो आग को भड़काता है और विकराल कर देता है। तो मुरली क्या है, ये शीतल जल है जो उस व्यर्थ की आग को ऐसी बुझा देता है जो समाप्त हो जाती है ना। तो इसीलिए वो कार्य मुरली करती है, इसलिए मुरली हमेशा अपने साथ रहे तो निर्विघ्न बनना आसान है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं अपनी ही लापरवाही जब होती है, अमृत वेला मिस हो जाता है, मुरली मिस हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होगा, विघ्न का स्वरूप बड़ा होता जाता है। और अक्सर विघ्न के समय यही होता है, व्यर्थ सोचते सोचते रात को भी सोएंगे तो अमृत वेला मिस होगा, मुरली क्लास फिर मिस होगा, मुरली में बैठेंगे तो भी नींद आएंगी, मुरली जाने नहीं देगा अंदर में, लिख नहीं पाएंगे मुरली, याद नहीं कर पाएंगे। यही माया की टेक्निक है, उसको विघ्न को आग देते हुए भड़काने के लिए। इसीलिए हम ये अपनी दिनचर्या में जो बाबा ने मर्यादाएं हमें दी है, उन मर्यादाओं में लापरवाही नहीं आने दे, ठीक है ना, क्योंकि यही हमें बचाता है, हमारी सेफ्टी का साधन है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है।
बहुत 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 थैंक्स, धन्यवाद। और अब लगता है ना, विघ्न कोई मुश्किल चीज नहीं होती है, बस ऐसा ही लगना चाहिए।
मैं धन्यवाद तो दूं, कल हमने शीलू दीदी ने हमें मौन की शक्ति से भरपूर किया, आज आपने हमें टोटल निर्विघ्न, अभी किसी को लग रहा है कि हम विघ्न हमारे पास आ सकता है? महावीर हो आप सब लोग, देखो वीएमएस की डिग्री हो, आईएएस बन रहे हैं हम, वीएमएस विश्व महाराज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कितनी शानदार डिग्री दी दीदी ने हमें। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि शीलू दीदी भी हमारे पास दो बार नीमच आ चुके हैं और हमारी उषा दीदी भी हमारे पास नीमच आ चुकी है। और अब मैं नीमच के अंदर एक बहुत बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम हम उषा दीदी जब आएंगी, मैं तो काफी टाइम से वेटिंग में ही चल रहा हूं, अभी डेट मुझे मिली नहीं है। जब जब अभी इस बार अक्टूबर नवंबर में कोई सी डेट ठंडा सीजन हो गए तो हम बहुत ग्रैंड प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि नीमच के प्रोग्राम बड़े ग्रैंड होंगे और शानदार होंगे। कम से कम 10,000 लोग लाएंगे बुला के, क्योंकि आपने गीता का भगवान सिद्ध करने में आप यज्ञ में नंबर वन हैं। और बिल्कुल वही वो क्या व्यासपीठ की स्थापना होती है, जैसे होती है ना कथावाचक आते हैं तो व्यासपीठ बनती है, ऐसी हमारे गीता ज्ञान की पीठ बना के दीदी ने बहुत सुंदर ढंग से करती हैं। आप हमें आज प्रॉमिस करा दें सबको कब की डेट दे रही हैं आप? पक्का थैंक यू ओम शांति।